किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आइए देखें किस्मत के ताने बाने में रिश्तों के सिरे कैसे सुलझते हैं। सरताज अली रिजवी की लिखी इस कहानी में, जिसका नाम है बदलते रिश्ते। आज के एपिसोड में मैं निधि बासु आपको सुनाती हूँ इस कहानी का पहला भाग। दूर दूर तक फैली है बस तन्हाई, दूर दूर तक फैली है बस तन्हाई, और ऐसे में याद तुम्हारी है आई। ग्रीन टी में शहद मिलाते हुए उसने अपनी बेसुरी और मोटी आवाज में फिल्मी गीत गाया तो रात के वक्त जंगल के डरावने माहौल में वो भी सुरीला लगने लगा। वनराज, यही नाम था उसका। उसके माँ बाप ने उसका नाम रखते हुए ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये नाम ही उसकी किस्मत का लिखा हो जाएगा और उसको नौकरी भी सरकार के जंगलात महकमे में मिलेगी। एक बहन और दो भाइयों में उसका नंबर तीसरा था। वो नौकरी लगने पर ज्यादा खुश नहीं था, चाहता था कहीं और भी कोशिश करे, मगर उसके बाबा ने जोर देकर कहा कि आजकल सरकारी नौकरी मिलती किसे है। बस तब से वनराज जंगलों का ही हो गया। जंगल के बीच बने अपने बंगले में रहता और अगर उसका नौकर रणजीत छुट्टी पर अपने गांव चला जाता तो उसे हफ्तों हो जाते किसी इंसान का चेहरा देखे हुए। आज भी रणजीत अपने गांव गया था। उसकी बीवी बीमारी से लड़ रही थी तो वनराज ने उसे छुट्टी दे दी। हालांकि कागजों में तो उसकी छुट्टी नहीं दिखाई जाती, मगर वो होता छुट्टियों पर ही, और वो भी वनराज की वजह से। शुरू में उसे जंगल के रात के माहौल से डर लगा, मगर धीरे धीरे ये डर खत्म होकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और सच भी यही है कि आदमी को कोई जंगली जानवर उस तरह नुकसान नहीं पहुंचाता जितना आदमी को खुद आदमी। वनराज ने भी जंगलों में दिल लगाना सीख लिया। उसे जंगल में कोई जानवर अगर घायल भी मिल जाता तो वो उसे घर लाकर उसकी सेवा करता और बाद में आजाद कर देता। 5 कमरों वाले उसके बंगले के 2 कमरे अक्सर इन जख्मी या बीमार मेहमानों से ही भरे होते। इस वक्त वो टेरेस पर बैठा ग्रीन टी का मजा ले रहा था।
हेल्प, हेल्प, बचाओ, बचाओ!
जंगल में इस वक्त एक लड़की की आवाज सुनकर वनराज चौंक पड़ा। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में आया जहां से सर्विस रिवॉल्वर, टॉर्च और लंबी सी लाठी लेकर वो उस तरफ दौड़ पड़ा जहां से उसे आवाज आई थी। घना अंधेरा था मगर उसके पैर इन रास्तों के आदि थे। कुछ फरलोंग दूर उसे इंसान नुमा कुछ दिखा। उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो उसे कीचड़ भरे गड्ढे में नीली जीन्स और काली जैकेट पहने पीठ पर बैकपैक लादे वो दिखी। शायद अंधेरे में वो गड्ढे में गिर पड़ी थी, मगर गड्ढा गहरा न होने की वजह से उसके टखने तक कीचड़ लग गया था।
कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो?
वनराज ने अपने अफसरी लहजे में पूछा।
जी, मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गई और अंधेरे में गिरने की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला और यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा कि किसी को मदद के लिए बुलाऊं।
लड़की ने जवाब दिया। ये घना जंगल है, यहाँ जब आदमी ही नहीं तो मोबाइल नेटवर्क क्या काम करेगा? आप आए बाहर और मेरे साथ चलें। वनराज ने उसे हाथों के सहारे खड़े करते हुए कहा।
मगर हम कहाँ चलेंगे?
मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, यहाँ कुछ दूर पे मेरा ऑफिस है, उसी में मेरा कॉटेज भी है, वहीं लेकर चलूंगा आपको।
मगर मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ?
नो प्रॉब्लम, आप यहीं बैठी रहें जब तक कि कोई जंगली जानवर आप तक अप्रोच करे। उसके बाद तो जो करेगा वो जानवर करेगा, मेरा क्या है। मैं सुबह आपकी मौत की रिपोर्ट बनाकर अपने हेड ऑफिस भेज दूंगा।
ये कहकर वो चलने लगा तो लड़की ने चीख कर उसे रोका।
नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके साथ चल रही हूँ, प्लीज।
मगर वनराज रुका नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उसके पीछे वो लड़की।
मेरा ख्याल है इसमें आपके कपड़े होंगे।
लड़की की पीठ पर लटके बैकपैक को देखकर उसने पूछा।
जी जी हाँ हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं।
तो ठीक है, वो सामने बाथरूम है, उसमें गीजर लगा है, जाइए हाथ मुंह धोकर चेंज करके आइए, फिर यहाँ आराम कीजिएगा। सुबह मैं आपको जंगल के बाहर तक छोड़ाऊंगा।
लड़की जब बाथरूम से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठी तो वनराज को आता देखकर खड़ी हो गई।
ये लीजिए, सैंडविच खा लीजिए और उसके बाद ठीक लगे तो ये चाय भी पी लीजिएगा।
वनराज ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोला।
और रिलैक्स होकर बाहर लॉन में आ जाइएगा, मैं वहीं हूँ।
वनराज लॉन में बैठा अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि उसके आने की आहट से चौंक पड़ा और पास पड़ी दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला,
बैठिए।
लड़की कुछ झिझकते हुए बैठ गई और पूछा,
आपका मोबाइल काम कर रहा है?
जी कर रहा है, क्योंकि मेरा ये मोबाइल सैटेलाइट मोबाइल है जो कि खास तौर पर इन जंगलात के लिए बनाया गया है। खैर मोबाइल को छोड़िए, ये बताइए आप कौन हैं और इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं?
जी मेरा नाम अंकिता है और मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ जंगल कैंपिंग करने आई थी, मगर दोस्तों से बिछड़कर रास्ता भटक गई।
अगर ऐसा है तुम मेरी भी सुन लें, मेरा नाम वनराज है, मैं इस समेत दुनिया के सभी जंगलों का देवता हूँ। मैं पलक झपकते ही अमेरिका के जंगलों में पहुँच जाता हूँ, वहाँ से अफ्रीका के जंगलों में, और सभी जानवर मेरे हुक्म के गुलाम हैं। सारे आदिवासी मेरी पूजा करते हैं, मेरी 126 बीवियाँ हैं जिन्हें लोग वन देवी कहते हैं।
क्या?
मैंने जो भी कहा उसमें मेरे नाम के अलावा बाकी सब झूठ है, बिल्कुल आपकी कही बात की तरह। इससे पहले कि मैं आपको यहाँ की पुलिस के सुपुर्द करूँ, मुझे अपने बारे में और यहाँ आने का मकसद सब कुछ सच सच बताएं।
जी मेरा नाम अंकिता है और ये सच है, आप मेरा पासपोर्ट देख सकते हैं।
अंकिता अपने बारे में बताने लगी और उसकी आंखों में फिल्म की रील सी चलने लगी।
देखो अंकिता, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला बुरा समझती हूँ। जब तुम्हारे डैडी करण के साथ तुम्हारे लिए राजी नहीं है तो क्या तुम उनके खिलाफ जाओगी और करण से शादी करोगी?
हाँ जाऊंगी मैं उनके खिलाफ, आखिर क्या बुराई है करण में जो डैडी नहीं मान रहे हैं?
तुम पूरी बात जानती हो कि क्यों खिलाफ हैं वो इस रिश्ते के, फिर भी तुम जिद पर अड़ी हो अंकिता।
तो क्या करूँ मैं, वो मेरे बाप हैं, इस नाते से मैं अपनी खुशियाँ छोड़ दूँ? अगर करण के पापा और डैडी में एक जमीन के टुकड़े को लेकर मुकदमेबाजी हुई, डैडी केस हार गए और कोर्ट ने जमीन का हक करण के पापा को दे दिया, तो इसमें करण का और मेरा क्या कसूर?
मैं फैसला कर चुकी हूँ मम्मी, ऑस्ट्रेलिया से करण के आते ही उसके साथ शादी करके ऑस्ट्रेलिया सेटल होने का, और परसों चंडीगढ़ से जो फैमिली मुझे देखने आ रही है मेरी बजाय आप उनको पारुल को दिखा दीजिए। तुमको इसलिए पढ़ा लिखा के जवान नहीं किया कि तुम माँ बाप के खिलाफ हो जाओ। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो करण से शादी।
मैं शादी करूंगी तो करण ही से, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे।
सुनो, उसने करण को मैसेज किया।
हाँ अंकी बोलो।
उधर से करण का जवाब आया, वो अंकिता को प्यार से अंकी कहता था।
यार पापा नहीं मान रहे हैं हमारी शादी के लिए, बल्कि परसों चंडीगढ़ से एक फैमिली देखने आ रही है मुझे।
तो तुमने अपना फैसला उन्हें नहीं बताया?
बताया है डियर, मगर डैडी तुम्हारे लिए राजी नहीं हो रहे।
ओ अंकल, कब तक उस एक बात को लेकर बैठे रहेंगे? अब तो मेरे पापा भी चल बसे, फिर भी।
हाँ करण, ये नहीं समझते। अब मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा।
थोड़ा रुक जाओ, मुझे सोचने दो कुछ कि मैं क्या करूँ।
तुम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे सोचते रहोगे, यहाँ डैडी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लेंगे।
अंकी प्लीज, थोड़ा प्लानिंग करने दो मुझे। मैं तुमको किसी और का नहीं होने दूंगा।
ओके, टेक योर टाइम।
टाइप करते हुए अंकिता ने बाय लिखा और सारी चैट डिलीट कर दी। सारा दिन अंकिता अपने कमरे से नहीं निकली, उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को जब उसने अपना मोबाइल चेक किया तो करण का मैसेज था।
हाय अंकी।
हाय माय स्वीट हार्ट करण, तुमने क्या सोचा?
उसने चैट की शुरुआत में ही पहला सवाल पूछा।
जो सोचा वो बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं?
5-7 हज़ार होंगे। इससे ज्यादा तो कभी भी नहीं होते, क्योंकि सारा पॉकेट मनी डैडी कैश देते हैं।
ओके, अब सुनो।
हाँ सुन रही हूँ।
ये बताओ, मेरे लिए घर छोड़ दोगी?
अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में रहे तो किसके पीछे घर छोड़ू?
अरे बाबा, पूरा प्लान तो सुनो तुम।
बोलो डियर।
मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूंगा।
मैं क्या करूंगी पैसों का?
पूरी बात सुनो अंकी।
हाँ बोलो।
तुमको जो पैसे मैं भेजूंगा, उन पैसों से तुम्हें नया मोबाइल लेना है और नया सिम कार्ड भी।
उससे क्या होगा?
उससे होगा ये कि जब तुम घर छोड़ोगी तो अपना मोबाइल साथ नहीं लाओगी अंकी।
पर मैं जाऊंगी कहाँ?
तुम रुड़की जाओगी, वहाँ मेरी दीदी तुमको अपने फार्म हाउस में ठहराएंगी।
और तुम कहाँ होगे?
मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारा वीजा लगवा कर इंडिया आता हूँ। लगभग एक हफ्ता लगेगा। तुम फौरन मुझे अपने पासपोर्ट की फोटोज भेजो। बस मैं इंडिया आके तुमसे शादी करके तुमको लेके ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ जाऊंगा।
मगर करण, मुझे इसमें बहुत डर लग रहा है।
इसमें डरने की क्या बात, मेरी दीदी से तो तुम मिल ही चुकी हो, उनके साथ उनके फार्म पर रहना, मैं तुम्हें वही मिलूंगा अंकी।
मैं रुड़की कब निकलूं?
परसों दोपहर वाली ट्रेन से निकलना। मैं टिकट बुक करवा के तुम्हें मेल करता हूँ। मगर हाँ, जब घर छोड़ो तो मेल डिलीट कर देना याद रख के।
सुबह उसने मोबाइल देखा तो बैंक के मैसेज पर नजर पड़ी। करण ने बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी थी। दोपहर को वो अपना स्कूटर लेकर बाहर निकली और मोबाइल और सिम ले आई। उसे इंतजार था तो कल का, जब वो निकल सके। दिन में 11 बजे वो पार्लर के बहाने से निकली, मार्केट से कुछ कपड़े और बैकपैक खरीदा जिसे लेकर उसे निकलना था। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा था। उसने पार्लर के बाहर अपना स्कूटर खड़ा किया और कुछ दूर जाकर ऑटो पकड़ा और स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि ट्रेन 1.5 घंटे लेट है। अंकिता घबरा गई। उसने मास्क लगा रखा था मगर फिर भी डर रही थी। अपनी तरफ देखती हर नजर से उसे लग रहा था कि अब तक उसके घर वालों को उसके गायब होने का पता चल चुका होगा और वो उसे ढूंढ रहे होंगे। ट्रेन 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे देरी से आई। अंकिता बैठ तो गई मगर अब उसे डर लग रहा था। गाड़ी रवाना हुई तो उसकी जान में जान आई। उसने वेंडर से चाय ली। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश में थी। उसने नया मोबाइल ऑन किया, नई सिम भी एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने डेटा ऑन करके करण को मैसेज किया।
मोहब्बत के सफर की सवारी में बैठी हूँ करण।
करण शायद उसके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था।
वेल डन अंकी, अब हमको एक होने से कोई नहीं रोक सकता।
हाँ करण, सच।
दीदी रुड़की स्टेशन पर मिल जाएंगी तुम्हें, और रुड़की आने में अभी 3 घंटे हैं। तुम तब तक थोड़ा रेस्ट कर लो।
मुझे भी यही लगता है। चलो फिर, बाय।
बाय अंकी।
ट्रेन में साइड लोअर बर्थ पर वो सिर टिकाए आने वाले वक्त के सपने बुन रही थी। गाड़ी उसके शहर से 50-60 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। जैसे जैसे गाड़ी बढ़ रही थी, अंकिता का डर भी कम होता जा रहा था। उसने करण की दीदी को फोन लगाकर बात की। दीदी ने भी उसकी हिम्मत बंधाई। अचानक अंकिता की नजर ट्रेन की खिड़की से बाहर गई। रेल की पटरियों के साथ हाईवे भी बना हुआ था। वो लाल और काली एसयूवी कार देखकर डर गई और उसके होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, आकाश भैया। उसने खिड़की पर तुरंत पर्दा लगाया और दरार से देखा, लाल एसयूवी अब भी हाईवे पर ट्रेन के बराबर दौड़ रही थी।
ओह नो,
कहकर उसने करण को मैसेज किया,
करण भैया की कार मेरी गाड़ी के साथ दौड़ रही है।
नसीब से करण ऑनलाइन था।
कैसे?
मुझे क्या पता कैसे, मगर ये बताओ अब क्या करूं?
ट्रेन में आते जाते नेटवर्क ने उसे और ज्यादा डरा दिया था। नेटवर्क आया तो करण का मैसेज पड़ा था,
तुमको कैसे पता वो तुम्हारे भैया ही हैं? उनकी कार के नंबर मैच किए क्या तुमने?
इतनी दूर से नंबर कैसे मैच करूं? मगर मुझे लगता है ये भैया की ही गाड़ी है, उनकी गाड़ी भी रेड एंड ब्लैक है।
ठीक है अंकी, रिस्क मत लो, तुम ट्रेन की चेन खींचो और जिस साइड भैया की गाड़ी चल रही है उसकी दूसरी तरफ वाले गेट से उतर जाओ, फिर बस स्टेशन तलाश करके बस से रुड़की जाओ, मैं दीदी को बस स्टेशन भेज दूंगा।
मगर करण, यहाँ तो एक साइड हाईवे है और दूसरी साइड जंगल।
अरे ये तो और अच्छा है ना, जंगल पार करके बस स्टैंड ढूंढ के रुड़की पहुँचो।
करण मुझे डर लग रहा है।
ये डरने का नहीं, एक्शन करने का टाइम है, चलो चेन खींचो और उतरो, क्विक अंकी।
अंकिता ने ऐसा ही किया और जंगल की तरफ भागी। उस वक्त दोपहर का सूरज शाम के दरवाजे पर दस्तक देने लगा था। डर और घबराहट की वजह से अंकिता को जहां सूझा वहीं चलती गई, मगर जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और शाम गहराती जा रही थी। जंगल में मोबाइल नेटवर्क भी साथ छोड़ चुका था। जंगल में अंधेरा गहराता जा रहा था और उसे सूझ नहीं रहा था, तो वो नाक की सीध में बढ़ती गई। जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही थी, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और इसी अंधेरे को मोबाइल की रोशनी से पार करने की कोशिश में वो कीचड़ भरे गड्ढे में फिसल गई थी, जहां उसे वनराज मिला था। तो मामला इश्क का है। अंकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये बताओ आगे क्या करना है?
क्या आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे ताकि मैं करण से पूछ सकूं?
वनराज ने हॉटस्पॉट ऑन किया और इंटरनेट से करण को कॉल किया। करण ऑफलाइन था तो अंकिता झुंझला गई, मगर थोड़ी ही देर में अंकिता का फोन बजा तो उसने देख लिया करण की नेट कॉल थी।
हेलो करण।
अंकी कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम्हें रुड़की पहुंच जाना चाहिए था।
मैं जंगल में भटक गई थी करण।
व्हाट रबिश अंकी, तुम दूध पीती बच्ची नहीं हो जो रास्ता भूल जाओ। मोबाइल में जीपीएस होता है, उसे इस्तेमाल करती।
जीपीएस तब काम आता ना जब नेटवर्क होता, जब नेटवर्क ही नहीं तो जीपीएस क्या खाक काम करेगा।
अच्छा ये बताओ अभी तुम कहाँ हो?
अभी मैं फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में हूँ करण। फॉरेस्ट ऑफिसर सर ने मेरी जान बचाई, उन्हीं के मोबाइल से नेट कनेक्ट करके तुमको कॉल किया।
अंकी रात को इस तरह रहना ठीक नहीं है, तुम निकलो वहां से अभी, बस स्टैंड जाओ और रुड़की पहुंचो।
करण ये कॉलोनी नहीं है, जंगल है, जंगल। यहाँ अंधेरा है, जंगली जानवर हैं, मैं कैसे निकलूं?
फिर तुमको जो ठीक लगता है वो करो, मगर कोशिश करना कि मुझे वीडियो कॉल करती रहो।
फिर कुछ देर बाद करण का वीडियो कॉल आया। उसने अंकिता से बात की और वनराज से भी। वनराज से उसने अंकिता का ख्याल रखने के लिए कहा। रात भर करण और अंकिता की चैटिंग चलती रही। सुबह वनराज ने उसके कमरे में चाय और टोस्ट रखते हुए कहा,
आप फ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको जंगल के बाहर तक छोड़ दूं।
जी अच्छा।
अंकिता फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो देखा वनराज नाश्ता लगा रहा था।
मेरा ख्याल है नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी रुड़की तक का सफर बस से करना है।
न चाहते हुए भी अंकिता नाश्ता करने बैठ गई। नाश्ता करते समय उसने वनराज से उसके और उसके परिवार के बारे में बातें की। नाश्ते से निपट कर वनराज उसे अपनी जीप में बिठाकर चल निकला। रास्ते भर जंगल के नज़ारे अंकिता का मन मोह रहे थे। फिर जब जंगल खत्म हुआ और हाईवे की पक्की सड़क पर गाड़ी दौड़ने लगी तो उसने वनराज से पानी पीने के लिए कहा। वनराज ने सड़क के किनारे जीप रोकी और पानी की बोतल लाकर अंकिता को दे दी और खुद एक तरफ खड़े होकर सिगरेट सुलगा ली। पानी पीते पीते अंकिता की नजर ढाबे पर बैठे लोगों से होती हुई ढाबे के कैश काउंटर पर पड़ी, जहां वो पोस्टर देखकर चौंक पड़ी। आप सुन रहे थे सरताज अली रिजवी द्वारा लिखी कहानी बदलते रिश्ते का पहला भाग। वाचन था निधि बासु का। किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें।